कथा चार अस्ति चंपकाभिधानायं नरगयायो परिवार्जकावस्था तत्र शूणाकणो नाम परिवार्जकः प्रतिवसति स च भोजना अवशिष्ट भिक्षान सहितं भिक्षापात्रं नागदंतके अवस्थाप्य सवपिति अहं च तदन्नम उत्पल्लुत्य प्रत्यहं पक्ष्यामि अनन्तरं तस्य प्रीसुहृद्र वीडाकणो नाम परिवार्जकः समायातः तेन सह नाना कथा प्रसंगावस्थितौ मम त्रासार्थे जजरवंश खंडेन चूणाकणो भूमिं टाण्डय तथ तम तथा विधं दृष्टवा वीणाकण उवा सखे किमिति मम कथा वीरकतो न्यासतो भवान चंपका नामकी नगरी में सन्यासी का आश्रम है। उसमें चूणाकर नाम का एक सन्यासी रहता है। वह भिक्षान को भोजन करके अवशिष्टान को पात्र में रखकर खूटी पर लटका कर सो जाता था। तब मैं प्रतिदिन कूद कूद कर उस अन्न को खाता था। एक बार उस चूणाकर्ण का प्रीमित वीणाकर्ण नाम का सन्यासी वहां आया और चूणाकर्ण वीणाकर्ण के साथ विविध कथाओं में लग्नचित्त होने पर भी मुझे डराने के लिए पुराने जर्जर बांस के टुकड़े से जमीन में टांडन करता था। तब टांडन करते हुए उसको देखकर वीणाकर ने कहा, मित्र तुम मेरी कथा को छोड़कर अन्यत्र मन क्यों करते हो? यतः मुखम प्रसन्नम विमला च दृष्टि कथानुरागो मधुरा च वाणी स्नेहोकधिक संभ्रम दर्शनश्च सदानुरक्तश्च जनस्य लक्ष्यम्। श्लोक संख्या 115। मुख पर प्रसन्नता, प्रेम वर्षिणी दृष्टि, बातों में प्रीति, वाणी में मधुरता, अत्यंत स्नेह, बारंबार देखना, ये छह चिन्ह सदा प्रेमी पुरुष में होते हैं। अदृष्टादानं कृत पूर्वान् नाशममानं दुश्चरितानुकृतिनं कथा प्रसंगेन च नाम विस्तीर विरक्त भावस्य जनस्य लक्षणम्। श्लोक संख्या 116। दृष्टि न देना, किए हुए उपकार का अभंगीकार करना, सत्कार नहीं करना, दुराचरण को प्रकाशित करना, वार्ता प्रसंग में याद भी नहीं करना, ये पांच चिन्ह मनुष्यों के विरक्त भाव को बताने वाले हैं। चूणाकणेन उक्तम भद्र नाहम विरक्तः किंतु पश्य अयम मूषको ममापकारी सदा पात्रस्थम भिक्षानमूलतया भक्ष्यति। वीणाकर्णो नागदंतमवलोक्याः कथमयम मूषिका स्वल्पबलोऽप्येतावत् दूरमुत्पत्यति तदत्तन्न केनापि कारेण भवितव्यम्। चूड़ाकर्ण ने कहा, भद्र मैं तुम्हारी बातों में विरक्त नहीं हूँ, किंतु देखो यह चूहा मेरा अपकार करने वाला है। यह रोजाना कूद कर पात्र में से भिक्षान को खा जाता है। तब वीणाकर्ण ऊंची खूटी को देखकर बोला, यह चूहा थोड़ा बल वाला होने पर भी इतना ऊंचा कैसे कूद सकता है? इसमें कुछ कारण होना चाहिए। क्षणम विचिन्त्य परिवारजकेन कारणाचान्य धन बाहुल्यमेव प्रतिभाति। सन्यासी ने थोड़ी देर तक विचार करके कहा, खूब धन ही इसके कूदने का कारण मालूम होता है। यता धनवान बलबाल लोके सर्व सर्वत्र सर्वदा प्रभुत्तमं धनमूलं हि राजाप्यो उपयाजते। श्लोक संख्या 117। समस्त धनवान लोग इस संसार में सर्वत्र सदा ही बलवान होते हैं, क्योंकि राजा को भी प्रभुत्ता धन के प्रताप से ही प्राप्त होती है। तथा खनित्रमादाय तेन परिवारजकेन विवरम खनिता चीर संचितम मम धनम गृहीतम तथा प्रभुते प्रत्यहम निज शक्तिहीन सत्वोत्साहरहिता स्वाहारमप्युत्पादाय तुमक्षम सत्राशम मंदम मंदम उपर्शन चूड़ाकर्णे अवलोकितः ततस्तैनोक्तम। उसके बाद खोदने का हथियार लेकर वह सन्यासी बिल को खोद कर बहुत काल से सुरक्षित एकत्रित रखे हुए मेरे धन को ले गया। उस दिन से प्रतिदिन शरीर बल से हीन, मन के उत्साह से शून्य और उदर पुरतर्थ आहार को भी प्राप्त करने में असमर्थ होता हुआ मैं डरता डरता और धीरे धीरे जा रहा था कि चूड़ाकर नाम के उस सन्यासी ने मुझे देखा और देखकर बोला, धनेन बल बालंक लोके धनाद भवती पंडितः पश्येन मूषिकं पापं स्वजाति समतां गतम्। श्लोक संख्या 118। लोग धन से ही बलवान तथा धन से ही पंडित होते हैं। इस पापाचारी अपनी जाति के धर्म अर्थात दरिद्रता को प्राप्त हुए मूषिक को तुम देखो। किंच अर्थेन तु विहीनस्य पुरुषस्याल्पमेधस्सः क्रियाशर्वः विनश्यन्ति गिष्मेकु सरितो यथा। श्लोक संख्या 119। द्रव्य रहित तथा बुद्धिहीन मनुष्यों की सभी क्रियाएं कृष्मकाल में छोटी नदियों की तरह सूख जाती हैं। अपरच यस्यार्थातस्य मित्राणि यस्यार्थातस्य बांधवा यस्यार्था सा पुम्मा लोके यस्यार्था सा ही पंडिता। श्लोक संख्या 120। संसार में जिसके पास द्रव्य हो उसके सब मित्र बन जाते हैं, जिसके पास द्रव्य हो उसी के सब बांधव भी हो जाते हैं। जिसके पास द्रव्य हो वह मनुष्य बड़ा गिना जाता है, जिसके पास द्रव्य हो वही पंडित गिना जाता है। अपरच अपुत्रस्य गृहं शून्यं सन्मित्र रहितस्य च मूर्खस्य च दिशः शून्या सर्वशून्या दरिद्रता। श्लोक संख्या 121। पुत्र रहित का गृह शून्य सा मालूम होता है, सन्मित्र रहित मूर्ख पुरुष के सब दिशाएं शून्य मालूम पड़ती हैं, और दरिद्र को तो सब प्रकार की शून्यता आदि दिखाई पड़ती है। अपरच दारिद्र्यान्य मरणादावापि दारिद्र्यम अवरम स्मृतम अल्पक्लेशेन मरणम दारिद्र्यमति दुःसहम्। श्लोक संख्या 122। दरिद्रता और मरण इन दोनों में दरिद्रता की अति हीन वस्तु है, क्योंकि मरण का तो थोड़ा सा ही दुख होता है और दारिद्र तो जीवन भर दुख देता है। अन्यच्च ता इंद्रियाणव विकलानि तदेव नाम सा बुद्धिर प्रतिहता वचनम तदेव अर्थो मशनाम विरहति पुरुषः स एव अन्य क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्। श्लोक संख्या 123। धनावस्था में पुरुष की जो सतेज इंद्रियां थी वे ही इंद्रियां वही नाम वही तीक्ष्ण बुद्धि वही वाणी और वही पुरुष है, लेकिन धन की गर्मी उतर जाने से क्षण मात्र में वह निस्तेज हो जाता है। एतत् सर्वं मार्कण्ये ययालोचितं मया ममात्रावस्थान युक्तमिदानीम्। इस प्रकार चूड़ाकर्ण का सब कथन सुनकर मैंने सोचा कि इस दरिद्रतावस्था में मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है, तथा चोक्तम् अत्यंत विमुखे देवे व्यर्थे यत्ने च पौरुषे मनस्विनो दरिद्रस्य वनादन्त्यत् कुतः सुखम्। श्लोक संख्या 124। भाग्य के अत्यंत विपरीत होने पर और पुरुष प्रयत्न के निष्फल हो जाने पर धनशून्य मनस्वी पुरुष को अरण्य से अतिरिक्त स्थान में कहीं भी सुख नहीं है। अन्यश्च मनस्तवी म्रियते कामम कापर्ण्यम न तो गच्छते अति निर्वाण मायाति नानलो याति शीतताम। श्लोक संख्या 125। तेजस्वी पुरुष मरण को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन दीनता की इच्छा नहीं करते, क्योंकि अग्नि जल से नष्ट तो हो जाता है किंतु शीतता को कभी ग्रहण नहीं करता। किंच कुसुम स्तब्बकस्यैव द्वे वर्तितु मनुष्विनः सर्वेषां मूर्धनि वातिष्ठद्विशेत मणि अथवा। श्लोक संख्या 126। पुरुषों के गुच्छ के कार्य की तरह तेजस्वी के भी दो व्यापार होते हैं, एक तो सबके सिर पर बने रहना अथवा वन में ही गिरकर विनाश को प्राप्त करता है। नच्चान्यस्मे एतद् वृत्तांत कथनम तदप्यनुचितम्। दूसरे को यह धनक्षय वृत्तांत कहना भी उचित नहीं है। यतः अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चारितानि च वंचनश्चाप मानश्च मतिमान प्रकाशेत। श्लोक संख्या 127। धीमान पुरुष को द्रव्य नाश मनोदुख गृहजनों की दुश्चरित्र परिकृत वचन तथा अपमान इन पांचों को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। यच्चात्रैव याञ्च्या जीवनम तदप्यतीव गृहीतम् और प्रतिकूल स्थान में भिक्षा मांग के जीवन चलाना सो भी अति निंदित है। यथा वरम विभवहीन प्राणी संतर्पितो अनलः नोपचार परिभष्टः कृपिणः प्रार्थयते जनः। श्लोक संख्या 128। संपत्ति रहित मनुष्य का अग्नि में प्रवेश करना उत्तम है, किंतु स्वधर्महीन लोभी आदमी से द्रव्य की याचना करना उचित नहीं है। अन्यश्च दारिद्र्यार्थी नियमेति हि परिकर्ता सत्वात् परिभ्रश्यते निस्सत्व परिभूयते परिभावत्रिवेद मापद्यते निर्वीणः सुचिमेति शोकपीहितो बुद्ध्यता परितज्यते निर्बुद्धि शमेते महो निधन्ता सर्वपादामस्पदम्। श्लोक संख्या 129। दरिद्रता के कारण लज्जा आती है, लज्जा के मारे पराक्रमी कार्य नहीं कर सकते। अपराक्रमी का पराभाव होता है और पराभाव से दुख होता है, उसको शोक रहता है, शोक से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धिहीन का नाश होता है। अहो दरिद्रता सभी आपत्तियों का स्थान है। किंच वरम मौनम कार्येन च वचन मुक्तम यदनृतम मनक्लेब्यम पुषाम न च परकल्त्राभिगमनम वरम प्राण त्यागो न च पिशुन वाक्येषु भीरुचि वीरुचिर वरम भिक्षाशित्वम न च परधनास्वादन सुखम। श्लोक संख्या 130। मौन रहना उत्तम है किंतु असत्य बोलना अच्छा नहीं। नपुंसक होना अच्छा है किंतु परस्त्री गमन अच्छा नहीं। मरना अच्छा है किंतु खलौती अच्छी नहीं। भिक्षा खाना अच्छा है पर परान अन्न खाना अच्छा नहीं। वरम सुन्या साला नाचा खलु वरो दुष्ट विषभो वरम वेश्या पत्नीना पुनर्विनीता कुलवधु वरम वाशो अन्येना वरम विवेकाधिपुरे वरम प्राण त्यागो न पुनर्धमानानु ममगा। श्लोक संख्या 131। गौशाला का शून्य रहना उत्तम है किंतु उसमें दुष्ट बैल का रहना उत्तम नहीं। वेश्या को पत्नी बनाना अच्छा है किंतु क्रूरा कुलवधु अच्छी नहीं। अरण्यवासी अच्छा है किंतु अविवेकी राजा के नगर में रहना उत्तम नहीं। मरना अच्छा है किंतु अधम जनों का समागम अच्छा नहीं। अपि च शैवैव मानमखिलं ज्योष्णैव तमोजरैव लावण्यं हरिहर कथैव दुरितं पुरुषत्तमर्प्य धृता हरति। श्लोक संख्या 132। सभा अर्थात नौकरी जैसे गौरव का नाश करती है, चंद्रमा जैसे अंधकार का नाश करता है, वृद्धावस्था जैसे सौंदर्य का नाश करती है, हरिहर कथा जैसे पापों का नाश करती है, वैसे ही याचना वृत्ति सैकड़ों गुणों का नाश कर देती है। तम कि हम परिपिंडे ने आत्मानं पोषयामि कष्टं भव तदपि दित्यं मृत्युद्धारम। तब फिर क्या मैं परान्न से शरीर का पोषण करूं? वह भी बड़ा कष्ट है क्योंकि परान्न भोजन भी एक यमालय जाने का स्वतंत्र कारण है। अन्यश्च रोगी चीर प्रवासी परान्न भोज प्रावस्थ्याशी प्रावश्यत्थशायी यज्जीवितं तन्मरणं यन्मरणं शोवश्यं विश्रामः। श्लोक संख्या 133। रोगी बहुत काल परदेशवासी प्राणभोजी परगृहवासी इन चारों का जीवन मरण तुल्य है और मरण विश्राम के तुल्य है। इत्यालोच्यापि लोभात पुनरपि तदीमन्नम गृहितम गृहम कर्मम। ऐसा सोचते हुए लोभ से पुनः उस सन्यासी के अन्न को खाने का विचार मैंने किया तथा चुक्तम लोभेन बुद्धिश्चलति लोभो जन्यति तिषां त्रिषार्थो दुःखमाप्नोति परत्रेह च मानवः। श्लोक संख्या 134। लोभ से बुद्धि चलायमान होती है और लोभ से धन उत्कंठेच्छा होती है और धन इच्छावान मनुष्य इस लोक में तथा परलोक में बड़ा दुख पाता है। ततो अहम मंदम मंदमुपशर्पे स्तेन वीड़ाकणेन जर्जर वश खंडेन तांडिश्चाचिन्तयम् लुप्तो हास संतुष्टो नियतम आत्मद्रोही भवति। उसके बाद उस वीड़ाकड़ नाम सन्यासी द्वारा जिड़े वंश दंड से तांडन किया हुआ मैं धीरे धीरे चलते चलते सोचने लगा कि लोभी और असंतोषी होना निसंदेह आत्मद्रोही बनना है तथा च धन लुब्धो है असंतुष्टो नियतात्मात्मा जितेन्द्रिय सर्वा एवा पदस्तस्य यश तुष्टम न मानसम। श्लोक संख्या 135। जिसका मन संतुष्ट नहीं है ऐसा जो धन लोभी तृष्णा वाला संयम शून्य और इंद्रियाधीन पुरुष है उसको सभी आपत्तियां आती हैं। सर्वासम संपत्ति यस्तस्य संतुष्टम यस्समानसम उपान द गुण पादस्य ननु चर्मावृतैव भू। श्लोक संख्या 136। जिसका मन संतुष्ट है उसी को सब प्रकार की सुख संपत्ति मिलती है। जैसे पैर में जूते पहनकर चलने वाले मनुष्य को समग्र भूतल चर्म से ही मढ़ा हुआ प्रतीत होता है। अपरच संतोषो मृततृप्तानां यस्सुखं शांत चेतसां कुतस्तद्धनलुब्धानां इतश्चेतस्य धावताम्। श्लोक संख्या 137। संतोष रूप अमृत से तृप्त शांत चित्त वाले जनों को जो सुख मिलता है वह सुख धन के लोभी इधर उधर दौड़ने वाले को कहाँ से मिले। किंच तेनाधितम श्रुतम तेन सर्वमनुष्ठितम तेनाशः पृष्ठता कृत्वा नैराश्यम अवलंबितम। श्लोक संख्या 138। जिसने आशाओं को पीछे रखकर निराशा का अवलंबन किया है उसने सब पढ़ लिया सब श्रवण कर लिया तथा सब अनुष्ठान भी कर लिया। अपि च असेवितेश्वर द्वार दृष्ट विरह वयथम अनुक्तव क्लीव वचनम धन्यम कश्वापि जीविनम। श्लोक संख्या 139। जिसको अपने जीवन में धनी के घर नहीं जाना पड़ता है और न तो सजनों के विरह का दुख देखना पड़ता है तथा मैं असहाय हूँ मेरा रक्षण करो ऐसा दीन वचन नहीं बोलना पड़ता है ऐसे पुरुष का जीवन धन्य है। यता न योजना शतम दुरम राह मानसा तिष्ठया संतुष्ट कर प्राप्ते प्यर्थे भवती नादर। श्लोक संख्या 140। तृष्णा से आर्त मनुष्य सौयोजन को भी दूर नहीं मानते हैं और संतोषी मनुष्य को हाथ में प्राप्त हुए भी पदार्थ में आदर नहीं होता है। तदत्र अवस्थो चित्त कार्य परखेद श्रेयान। इसलिए अब अपनी स्थिति के अनुकूल कार्य करने का निर्णय करना ही उचित है। को धर्मो भूत दया किम सौख्यम नित्यम रोगिता जगति का स्नेह सद्भाव किम पांडित्यम परिच्छेद। श्लोक संख्या 141। संसार में धर्म क्या वस्तु है? प्राणी मात्र पर दया करना धर्म है। सुख का क्या स्वरूप है? सदा निरोगी रहना ही सुख है। स्नेह का क्या स्वरूप है? सद्भावना ही स्नेह है। पांडित्य किसको कहते हैं? कर्तव्य कर्तव्य का निर्णय करना ही पांडित्य है। तथा च परिच्छेदो ही पांडित्यम यदापन्ना विपत्तयः अपरिच्छेद कर्तृणा विपदा स्युः पदे पदे। श्लोक संख्या 142। पांडित्य को ही परिच्छेद कहते हैं क्योंकि विपत्तियों का अंत पांडित्य से ही होता है। परिच्छेद अर्थात कर्तव्य कर्तव्य विचार नहीं करने वाले को आपत्तियां क्षण क्षण में आती रहती हैं। तथा ही त्यज्येकम् कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम् तेजा ग्रामम् जन्म पद्यस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम् त्यजेत। श्लोक संख्या 143। कुल की मर्यादा के रक्षण के लिए घर के एक व्यक्ति का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए और ग्राम की रक्षा के लिए कुल त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। देश की रक्षा के लिए ग्राम त्याग करना पड़े तो वह भी करना और देश का भी त्याग करने से आत्मरक्षा होती हो तो देश भी त्याग देना चाहिए। अपरम च पानीयम वा निरायासम स्वादवन्नम वा भायोत्तरम विचार्यम खलु पश्यामि तथा सुखम यत् निर्वृत्ति। श्लोक संख्या 144। बिना प्रयास से मिला हुआ जल और पीछे से विकार प्रयुक्त दुख का भय कराने वाला मिष्ठान भोजन, इन दोनों में विचार करके जिससे शांति होती है वही सुखकर है, ऐसा निर्धारण करता हूँ। त्यालोच्याहम निर्जवनम आगतः, ऐसा विचार कर मैं निर्जन वन में आया हूँ। यतः वरम वनम व्याघ्र गजेन्द्र सेवितम द्रुमाल्यः पत्र फलांबु भक्षणम तिणानि संया वशनम च वल्कम न बंधु मध्ये धनहीन जीवनम। श्लोक संख्या 145। जिस वन में वृक्ष ही घर है, पत्र फल का भोजन तथा नदी का जल पीना है, घास की सया है, वलकल के वस्त्र है, ऐसे व्याघ्रजनों से सेवित वन में रहना अच्छा है, किंतु कुटुम्ब के बीच में धनहीन जीवन अच्छा नहीं है। ततः अस्मत्तु पुण्यो दयानंदनेन मित्राणां स्नेहावृत्त्यानुगृहीतः अधुना च पुण्य परंपरा भवदाश्रय सर्ग एव मया प्राप्तः। वन में आने के बाद हमारे पुण्योदय से इस मित्र काक ने स्नेहातिशय से मुझको अनुग्रहित किया और अब भी पुण्य प्रताप से आप अर्थात कुर्म का आवास स्थान स्वर्ग में ही मैंने पाया। अतः संसार विश्वक्षस्य द्वे एव रसवत्फले काव्यामृतरसस्वादः संगमः सज्जने सह। श्लोक संख्या 146। संसार रूप विश्वक्ष के काव्य रूप अमृत रसास्वादन और सत्पुरुष का समागम, ये दो ही मधुर रस वाले फल हैं। अपरच सत्संग केशवे भक्तिर गंगा भसी निर्मर्जनम असारे खलु संसारे तिनि सारणी भावेत। श्लोक संख्या 147। असार संसार में सत्संग भगवत भक्ति गंगा स्नान, ये तीन ही सार हैं, उनका सेवन करना चाहिए। मंथर उवाच अर्था पादरजोपमा गिरिनदी वेगोपम यौवनम आश्युच्यम जलबिंदु लोचन फलम फेनोपम जीवनम धर्मे यो न करोति निश्चलमति सर्वाग्रो लोदाघाटनम पश्चातापहतो जरा परिणतः शोकाग्नि दह्यते। श्लोक संख्या 148। मंथर ने कहा संसार में धन चरण तल की धूली के समान नाशशील है, यौवन पर्वत की नदी के वेग के समान अस्थिर है और मनुष्य की आयु जल बिंदु के समान क्षण में शुष्कशील है। जीवन गाज के समान नाशशील है तो भी जो बुद्धिमान जन स्वर्ग के दरवाजे खोलने वाले धर्म को नहीं कर सकता है वह जरा से पीड़ित होकर पश्चाताप करता हुआ शोकाग्नि से जलता रहता है। युष्मा भी अतिसंचय कृतः तस्यायम दोषः, आपने भी खूब द्रव्य संचय किया उसका यह फल है। शिनु उपार्जितानां वित्तानां त्यागम एव हि रक्षणम तदा गोदर संस्थानां परिवाह इवाहं भस्साम। श्लोक संख्या 149। जैसे तालाब के नाप से अधिक जलों का बाहर निकलना ही थाई जल का रक्षण रूप है, वैसे ही जीविका साधन से ज्यादा कमाया हुआ द्रव्य का दान देना ही रक्षण है। अन्यच यदधो अध क्षिप्तो वितम निच्छानम मित्तम पचः तद्धो निल्यम गंतु चक्रे पंथानमग्रतः। श्लोक संख्या 150। धनवान होने पर भी जो कृपण पृथ्वी में जो धन गाड़ता है वह अर्थात पृथ्वी खोदना प्रथम से ही उस कृपण को नरक रूप अधोगति में जाने का मार्ग बनाता है। यता निज सौख्यम निरुधानो योधनार्जन मिच्छति परार्थ भारवाहि व सक्लेशस्यैव भाजनम। श्लोक संख्या 151। जो मनुष्य अपने को आराम न देकर केवल द्रव्योपार्जन ही करता है, वह मनुष्य दूसरे के लिए भार ढोने वाले गधे की तरह केवल क्लेश का ही पात्र बनता है। तथा चुक्तम दानोपभोगहीनेन धनेन धनिनो यदि भवामम किं न तनैव धनेन धनिनो वयम्। श्लोक संख्या 152। अगर दान तथा उपभोग से शून्य जो द्रव्य है उससे यदि धनी कहते हैं तो हम भी उस अर्थात दूसरों के धन से धनी क्यों नहीं कहें। यता धनेन किम यौन ददाति नाशुन्ते बलेन किम यच्च रिपुनम न बाधते श्रुतेन किम यौन च धर्माचरेत किमात्मना यौन जितेन्द्रियो भवेत। श्लोक संख्या 153। जो धनी न दान देता है न खाता है उसके धन का कोई फल नहीं है। जो बलि पुरुष शत्रु को कष्ट नहीं देता है उसका बल निष्फल है। जो पंडित जन धर्म नहीं पालते हैं उनका पांडित्य निष्फल है। वैसे ही जो जितेंद्री नहीं है उसका जीवन ही निष्फल है। अन्यच्च असंभोगिन सामान्यम कृपणस्य धनम परै अस्येदमिति संबंधो हानो दुखेन गम्यते। श्लोक संख्या 154। कृपण पुरुष का धन भोग रहित होने से धन स्वामी के प्रति तथा अस्वामी के प्रति समान है। केवल द्रव्य का अकस्मात नाश होने से जिसको दुख होता है उसे ही उसका मालिकपन मालूम हो जाता है। अपिच न देवाय न विप्राय न बंधु भयो न चात्मने कृपणस्य धनम याति वहनितश्च कर पार्थिवे। श्लोक संख्या 155। कृपण पुरुष का द्रव्य देवता के लिए, ब्राह्मण के लिए, बंधुजनों के लिए और अपने कार्य के लिए उपयोग में नहीं आता है, किंतु अग्नि, चोर या राजा इनसे लूटा जाता है। तथा चुक्तम दानम प्रिय वाक सहितम गानम अग्रिव क्षमान्वितम शौर्यम त्याग सहितश्च हितम वित्तम दुर्लभ मेच तु भद्रम। श्लोक संख्या 156। प्रियजन पूर्वक दान गर्व रहित पांडित्य क्षमायुक्त सूरता तान युक्त द्रव ये चारों श्रेय पदार्थ दुर्लभ है। उक्तच्च कर्तव्यो संचयो नित्यम कर्तव्यो नाति संचया पश्य संचय शीलो वसो धनुषा जम्बुको हता। श्लोक संख्या 157। सदा संचय करना चाहिए लेकिन उचित का त्याग कर अति संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अति संचय करने वाला यह श्रृंगाल धनुष से मारा गया। तवाहतु कथमेतत् मंथरा कथ्यति मुषिक तथा काक दोनों बोले यह जम्बुक का वृत्तांत कैसा है। तब मंथर कहने लगा